जयमा, यदि हम संसार को देखते हैं इन आंखों से जो हम लोगों के पास हैं, हम लोग आंख वाले अंधे हैं। आंख वाला अंधा बहुत भयानक होता है क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि वो अंधा है। और अगर हम इस संसार को समझने की चेष्टा करते अपनी सीमित समझ, सीमित दृष्टि से, तो स्पष्ट है कि किसी भी प्रबुद्ध मन के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। और यदि प्रश्न नहीं उठ रहे हैं तो कुछ समस्या है, क्योंकि अगर हम देखते हैं संसार को तो सब तरफ, कम से कम ये बाहर की दृष्टि से जितना देख पाते हैं, हम लोगों को वो बात याद आती है जिसको अपने ढंग से याद आती है, जिसको उद्धव के बारे में सुना होगा सबने, श्री कृष्ण के मित्र हैं, तो वो लिखते हैं, वो अपने अंदाज से इसको प्रस्तुत करते हैं, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। अब वहां वो कर्म का भाग ला रहे हैं, लेकिन वील कम टू दैट। और फिर कहते हैं, उज्ज्वल पंख दिए बगले को कोयल कही विधिकारी। बगला तो छल करता है, मछली खाता है, और उसको तो आपने इतना सुंदर बनाया है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उजला सुंदर है, ये भ्रांति है। हमारे कृष्ण जी सांवरे सलोने हैं, और द्रौपदी जिसके सौंदर्य के कारण कहां कहां से लोग नहीं आ गए, वो भी सांवली हैं, और हेलेन ऑफ ट्रॉय भी हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उनकी, उनका पद है, उज्ज्वल पंख दिए बगले को कोयल के ही विधिकारी। तो यहां तक तो चलो, लेकिन आगे एक चीज और लिखते हैं जो लगता है कि हां बात तो सही है। मूरख मूरख राज करत हैं पंडित फरत फिरत भिकारी। उस समय भी यही हाल था। डेमोक्रेसी हो, कम्युनिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, मूरख मूरख राज करत हैं पंडित फिरत भिकारी। उधो कर्मन की गति न्यारी, बहुत जगह वो इस बात, मतलब कई सारे उसके पद हैं। तो जब हम इस संसार को देखते हैं तो कई बार ये मन में प्रश्न उठता है संवेदनशील व्यक्ति के, सच में कोई भगवान है कि नहीं है, कोई भगवान की व्यवस्था है कि नहीं है। और वहां से खोज प्रारंभ होती है, और इस खोज को कई तरह से लोगों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। एक प्रस्तुति यह है कि वास्तव में ये संसार केवल एक जड़ प्रकृति है, ये अपने आप चल रही है। ये मेटेरियल साइंस का जो कंसेप्शन है वही कंसेप्शन है कि भाई ये जड़ प्रकृति है। सांख्य दर्शन ये अपने आप रोल कर रही है, इसमें भगवान वगैरह को लाने की क्या जरूरत है। लेकिन उसमें एक चीज जो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये चेतनता कैसे आई। यदि जड़ प्रकृति है तो उसके अंदर चेतना का उदय कैसे हुआ। आधुनिक विज्ञान इसको समझने की चेष्टा कर रहा है, हम लोग उसके निटी ग्रिटी में नहीं जाएंगे। लेकिन सांख्य ने इसका जो एक उत्तर दिया है, जो मोर और लेस अब आधुनिक विज्ञान वहां पे उतना एक्सेप्ट करने लगा है, कि चेतना का स्रोत जो है वो चेतना अपने आप में एग्जिस्ट करती है। उसका स्रोत, अब आधुनिक विज्ञान ये नहीं कहता है कि वो पुरुष तत्व, लेकिन वो कहती है कि कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो सांख्य कहेगा कि पुरुष वो है सोर्स इंटेलिजेंस का, और वो इंटेलिजेंस सब चीज को अवेयर करती है। पर अपने आप में ये संसार एक जड़ प्रकृति है, जो कॉज एंड इफेक्ट उसमें घूम रही है, नाच रही है। स्वाभाविक है ये सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं है, ये अपने आप में बहुत साइंटिफिक लगता है और अच्छा भी लगता है, लेकिन ये जीवन के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ है जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, लेकिन अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। दूसरा एक कंसेप्शन है इस संसार के बारे में, तो वो कहता है कि वास्तव में ये संसार जो है ये एक माया है, एक छल है, और हम सब भ्रमित हैं। और सॉल्यूशन क्या है, इस मायावी संसार से, इस क्षेत्र से बाहर निकल करके आप वापस वहां चले जाओ जहां पर माया नहीं, माया का जो सोर्स है। लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं केवल एक दो करूंगा, लेकिन एक आपको उदाहरण बताऊंगा कि ये किस तरह का है। कि एक बार म्यूजियम लंदन में है, वैक्स म्यूजियम, तो मुझे मेरे मित्र ले गए, तो वहां नीचे एक, मुझे नहीं पता था कि वहां पर एक हॉरर का भी कुछ है, जहां आप जाएंगे टिकट लेके लोग जाते हैं हॉरर एक्सपीरियंस करने के लिए। आपको एक गाड़ी में बैठा देंगे जिससे आप भाग नहीं सकते हैं, और वो पूरा हॉरर शो के थ्रू आप जाएंगे। अचानक कहीं से हाथ आ जाएगा, कोई चिल्लाएगा, इत्यादि इत्यादि। मुझे तो मजा आ रहा था, मजा मतलब लग रहा था ये क्या है, ये बचपना, ये कोई डरावनी चीज। पर एनीवे जो ले गए, तो मैंने उनको बोला भी यहां लाने की क्या जरूरत थी, पर खैर। तो वो लेकर के जब मैं बाहर आया तो मुझे लगा अच्छा ये है इसका मतलब। आप जब तक उससे गुजरते हैं ना 20 मिनट का प्रोसेस से, तब आपके अंदर ये आता है जल्दी कैसे बाहर आ जाए। तो एक कंसेप्शन ये भी है कि ये हॉरर शो है, जिससे आपके अंदर वापस जाने की मन में उमंग आ जाए। और जब वापस जाते हैं तो वही वैक्स स्टैचू का जो म्यूजियम है आपको बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मुझे वो फर्स्ट साइट में लगा ठीक है, नो बिग डील, लेकिन अचानक आपको अच्छा लगने लगता है क्योंकि आप हॉरर निकल करके। तो ये भी एक कंसेप्शन है संसार का कि ये माया है, यहां हर तरह की चीजें हैं, और सुख दुख तो आपकी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, वास्तव में नहीं है, ये तो प्रोसेस मशीन है। मशीन न सुख देती है न दुख देती है, वो आपकी प्रतिक्रिया है, ये आपके ईगो कंडीशनिंग ये सब है। और इससे वापस आ जाते हैं तो सब खत्म हो जाता है। अब इसमें एक संभव प्रश्न उठता है कि गया कौन था अंदर में। कहानी आती है ना कि एक कोई व्यक्ति ने किसी को धक्का दिया कि तू तो बहादुर है, तू चला जा चला जा, वो नहीं जाना चाह रहा था, और कूद कूदा तो अब क्या करेगा, उसने बचाया जिसको बचाना था। बाद में लोगों ने कहा अरे आप बड़े बहादुर हैं, बहुत बलवान है। कहता मुझे ये बताओ धक्का किसने दिया था मुझे। तो वैसे ही कुछ की अब चले गए बाहर आए तो गए कौन, क्यों गए हम। तो एक उसका उत्तर है, ये सब कुछ इल्यूजन है, इंक्लूडिंग आपका, देयर इज नथिंग लाइक इवन इंडिविजुअल सोल। अब उसमें और प्रॉब्लम शुरू हो जाती, फिर मुक्त कौन हुआ, बंधन में कौन था, इत्यादि इत्यादि। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये समुचित उत्तर नहीं है, ये तो बल्कि और प्रश्न उठा देता है। इससे अच्छा तो वैज्ञानिक है जो कहता है कुछ नहीं है अपने आप मशीन, लेकिन उसमें और भी समस्या है। उसमें समस्या ये है कि फिर ये अगर अपने आप हो जाने वाली घटना है तो ये कैसे शुरू हुई, इसका कोई अंत है कि नहीं। तो दोनों में मनुष्य के, किसी भी प्रबुद्ध जीव के मन को उत्तर नहीं मिलेगा। फिर एक और उसकी कंसेप्शन है, कंसेप्शन ये है कि नहीं, एक इंडिविजुअल सोल है और वो इसके थ्रू डेवलप करती है। ये वेदांतिक कंसेप्शन है, बहुत एक तरह से अच्छा है कि ये सब अनुभव के द्वारा अंदर में कोई है जो बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा होता होता वो अचानक रियलाइज करता है कि आई एम दैट, और फिर आप जुड़ जाते हो। इसको हम ऐसे समझें कि कोई बच्चे को माता पिता स्कूल भेजते हैं, और स्कूल में उसको नाना प्रकार के शिक्षक हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, कुछ छड़ी लेके ट्रीट करने वाले हैं, कुछ रसगुल्ला देने वाले हैं। और अंत में क्या है कि जब आप पूरा बढ़ जाते हो इस सबसे निकल करके स्कूलिंग से, तो अब स्कूल क्या था, अगर कोई बच्चे से पूछेगा अंत में बोले नहीं अच्छा स्कूल था, मुझे बड़ा कर दिया, इतना ही है, तो मैं बड़ा हो गया। तो अब समस्या ये है कि अगर ये रियलाइजेशन आपका एंड पॉइंट वही है जहां से आप आए थे, तो अब ये गए ही क्यों, ये प्रोसेस क्या है, बीच के रूप में डाल के इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से बड़ा होना। तो ये इसका एक तो मूल प्रश्न ये रह जाता है, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं जो अधूरे रह जाते हैं, लेकिन ये कंसेप्शन है जो आमतौर पर माना जाता है। एक कंसेप्शन है कि, एक तो ये है कि ये माया है, एक कंसेप्शन है ये लीला है। अब लीला थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड है, उसमें ये आता है कि ये भगवान का खेल है। तो अब उसमें क्या है कि ये भगवान ने रची हुई लीला है, उनका खेल है। और प्रॉब्लम इसमें बस ये है कि ये खेल तब तक तो ठीक है जब तक आपको पता चल जाए कि ये खेल है। अब सोच लीजिए कि एक क्रिकेट मैच चल रहा है या फुटबॉल का मैच चल रहा है, सारे लोग भाग रहे हैं, अचानक कोई आपको धक्का दे दे मैदान में, आपको ना रूल पता है ना कुछ पता है, आप इधर से मारे जा रहे हो, आपको ये भी नहीं पता कि आप किस साइड में खड़े हो, लीला की प्रॉब्लम यह है कि जब हम सचेत हो जाते हैं, संज्ञान हो जाता है कि ये खेल क्या है, इसके रूल्स ऑफ द गेम क्या है, तब तो लीला में मजा आता है। क्योंकि बाद में हम देखेंगे तो वास्तव में फुटबॉल हार और जीत का तो ये पैसे के लिए और लोगों के लिए है, पर इसका मजा खेलने मात्र में है। आप हारे या जीते, खेल से आपका विकास होगा और बाद में जाकर के सारे प्लेयर एक दूसरे से हाथ मिला के शेक हैंड करते हैं, पार्टी करते हैं। खाली वो जो लोग देख रहे होते हैं खेल, वो दुखी या खुश होते हैं। तो इस कंसेप्शन में लीला के कुछ हद तक हम करीब जाते हैं कि खेल है आनंदार्थ, आनंद के लिए है। पर स्वाभाविक है कि हम लोग जब खेल ये खेलते हैं, हम लोगों को तो पता नहीं है कि खेल के नियम होते हैं ना, रूल्स ऑफ द गेम क्या है, और हम उतने स्ट्रांग भी नहीं है। जबरदस्ती कोई आपको फुटबॉल में भेज दे, मुझे बचपन में बहुत क्रिकेट का शौक था, लगता था मैं बहुत अच्छा हूं। एक बार एक स्टेट लेवल टीम वालों ने बोला कि आपको हम देखते, किसी ने ऐसे ही रिकमेंड कर दिया नाम, तो पहला बॉल किया हम बहुत कॉन्फिडेंट हो क्योंकि मोहल्ला में बहुत आपको अच्छा खेल रहे हो। अब वो स्टेट लेवल के बॉलर ने बॉल किया और मुझे पता भी नहीं चला, मेरा स्टंप उड़ गया, तो सेकेंड बॉल भी उड़ गया, थर्ड भी उड़ गया, उसके साथ मेरा क्रिकेट करियर समाप्त हो गया। मैंने कहा मैं एम्पायरिंग करूंगा। तो आई बिकेम एन एम्पायर, क्योंकि ये वो भी वो ऑफ स्पिनर है, वो कोई पेस बॉलर नहीं है, लेकिन इतना तेज बॉल है। तो ये कह देना अच्छा लगता है इट्स ए प्ले, पर उस प्ले में मेरा क्या रोल है, कहां मैं खेलूं, ना मैं इक्विप्ड हूं, ना मेरे अंदर ज्ञान है, ना शक्ति है, तो ये प्ले भी अजीब है। और वो माताजी कहती हैं कि सीम्स इन इग्नोरेंस लाइक ए क्रूएल जोक। जब आप कोई अंदर ज्ञान आ जाता है, देन यू कैन एंजॉय द प्ले, कि ठीक है हार जीत असल चीज नहीं है, खेल के आगे। पर फिर भी ये भी संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि जब हम जीवन को देखते हैं तो यहां पर पीड़ा भी रियल है और ईविल भी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों ने इसको इग्नोर करने की चेष्टा की है, और उसका एक स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन होता है कि इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है, आपके कर्म हैं ऐसे। अब उसमें भी बड़ी समस्या है। अब कोई अगर ह्यूमन जज आपको फैसला सुनाता है, तो आपको देखिए इवन ह्यूमन जजमेंट कितने पेज का होता है, कितने विटनेस होते हैं, बाद में वो आपको जजमेंट सुनाएगा। आपकी आधी जिंदगी निकल गई, उसके बाद वो जजमेंट सुनाएगा कि आपको ये अपराध था। यहां कैसा जजमेंट है कि आपको पता ही नहीं चलता कि किस बात का। और उल्टा देखते हैं, वो स्वप्न कहानी है श्री अरविंद की, उसमें इस बात को बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है। देखते हैं हम क्या है कि दुर्योधन तो राज्य करता है, वो राजा के घर में पैदा होता है, राजा बन के रहता है और मरता भी वो राजा बन के। उसका फ्यूनरल, स्टेट फ्यूनरल नहीं मिलता, वो अलग बात है, लेकिन इट इज लाइक ए किंग। और पांडव जो वैसे बड़े अच्छे हैं, वो जन्म से जंगल में चले जाते हैं, उसके बाद बीच में जब उनको राज्य मिलता है, फिर जुआ में हार के जंगल में चले जाते हैं, अंत में जब वो कॉन्कर कर लेते हैं महाभारत के बाद, फिर वो अपना मर्जी से हिमालय चले जाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या हो रहा है उनके साथ में। तो उसका उत्तर दिया जाता है कि नहीं, ये इस जन्म का खेला नहीं है, पहले पांडव बड़े पापी थे, अब इतने पापी थे तो इतने अच्छे कैसे बन गए, और जब अच्छे बन गए उस समय आप उनको पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं, और दुर्योधन इतना पुण्य आत्मा था तो इतना बुरा कैसे बन गया। कहने का मतलब ये संक्षेप में कि जितने भी ट्रेडिशनल आंसर्स हैं, उत्तर हैं, कोई भी किसी भी कोई कॉन्शियस मन को, सेंसिटिव संवेदनशील मन को ये सेटिस्फाई नहीं करता है। मान्यता की बात अलग है, मानने वाले कुछ ही मान ले, मानने वाले तो ये भी मानते हैं कि भगवान वास्तव में उसके अंदर करुणा वगैरह नहीं है, वो तो केवल एक अपने मस्ती में खेल खेल रहा है, वहां से मानने वाले ये भी मानते हैं। मानने वाले तो ये भी मानते हैं कि मनुष्य को मृत्यु के बाद आपके विश्वास के आधार पर इटर्नल हेल्थ दिया जाता है। तो यहां मान्यता की बात नहीं हो रही है, मान्यता एक अलग चीज है, लेकिन जानना जो चाहता है कि ये क्या है आखिर अंत में, ये जानना किस लिए जरूरी है, ये जानना केवल बौद्धिक संतुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है कि हम इस संसार में यदि हैं, तो हमको पता तो होना चाहिए कि क्यों है, क्या है, इसके पीछे कोई प्लानिंग है कि नहीं है। एक छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति सर्कस में गया, तो देख रहा था सर्कस में कि एक तोता साइकिल चलाता है सर्कस में, फिर देखा कि वो बंदर कुछ कर रहा है, कुत्ता जो बोलता है आज्ञा मिलता है उसको लेके आ जाता है, बंदर लिख रहा है उसको बोला ग तो ग ले आया, बना दिया, बड़ा देख के आश्चर्य कमाल है। फिर वो उसको लेके जाते हैं, वो इंस्पेक्टर है कि देखिए, तो फिर सब अपने अपने पिंजड़े में जाके बड़े खुश हैं, क्यों, उनका काम हो गया, खाने पीने को मिल गया। एक सिंह भी वो फटकारा मिल गया, यही काम चल रहा है सर्कस में। एक सिंह चुपचाप बैठा हुआ वो फेंस को देख रहा है जो जिसके अंदर ये सारा सर्कस है, तो पूछता है पशुओं की भाषा में, भाई तुम क्या कर रहे हो, ये सब लोग इतना मजा कर रहे हैं, तुम क्यों मजा नहीं करते हो, क्या तुमको मीट नहीं मिलता है? बोला मिलता है वो भी सब करता हूं जो सब कर रहे हैं, तो ये जो बाकी समय क्या कर रहे हो? बोले मैं ये समझने की चेष्टा कर रहा हूं कि मैं यहां आया कैसे, यहां से मैं बाहर कैसे जाऊं, ये जो सारा चारों तरफ ये जो लगा हुआ है, मेरा तो मन है जंगल में जाके मैं स्वतंत्रता से रहूं, बट आई डोंट नो हाउ टू गो, क्योंकि मैं तो इसके अंदर बंद हूं, तो मैं खाली समय बैठ के यही देखता हूं कि हाउ टू गेट आउट ऑफ हियर। अगेन प्रश्न वही रह गया, हु पुट यू हियर। तो ये सारे जो प्रश्न है, और बहुत सारे प्रश्न किसी भी प्रबुद्ध मन के अंदर उठेंगे, सारे प्रश्नों की बात करने से एक पूरा सेशन उसमें ही चला जाएगा। मां कहती हैं, आपको संक्षेप में बता रहा हूं, मां एक जगह कहती हैं कि जब मैंने संसार के कंसेप्शन सुने भगवान के अलग अलग, तो मुझे ये लगता था, खासकर सेमिटिक रिलीजन जिसमें वो जन्मी, ज्यूइश वर्ल्ड, क्रिश्चियन वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड जो उनके चारों तरफ था, कहती थी मुझे लगता था कि भगवान वास्तव में ये लोगों ने जो बताया यदि ये सच है तो वो एक मॉन्स्टर है, असुर राक्षस है, और वास्तव में अगर आप कंसेप्शन सुनेंगे, अगेन वो हम लोगों का विषय नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इनके जो भगवान हैं वो खुद ही राक्षस हैं, वो छोटी सी गलती के ऊपर वो बेचारे ने सेब खा लिया तो उसको पनिशमेंट दे दिया। वो कहानी सांकेतिक है लेकिन उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर आप उस कंसेप्शन को सुनेंगे तो लगता है कि ये तो खुद ही राक्षस है, तो वो तो जो कर रहे हैं कर रहे हैं। तो मां कहती है आई बिलीव दैट इफ देर इज ए गॉड इज लाइक ए मॉन्स्टर। फिर उन्होंने क्या किया जो हम सबको करना चाहिए, कि हमारे कंसेप्शंस के बारे में अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन हमको खोजना चाहिए कि संसार का ओरिजिन कुछ है कि नहीं, हमारा कुछ ओरिजिन है कि नहीं। एक बार पटियाला में एक स्कूल में टॉक हुआ मेरा, उसके बाद में जो होता है प्रश्नोत्तर, तो मैंने पूछा कोई प्रश्न है, तो एक 12वीं क्लास की लड़की ने हाथ उठाया, बोला मेरा प्रश्न है। मैंने कहा हाँ बेटा बोलो। बोली बोल दूं अंकिल? मैंने कहा हाँ निशंक कुछ बोलो। बोली मैं भगवान में नहीं मानती। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, किस भगवान में नहीं मानती? अब ये उसके फॉर्मेट में नहीं था किस भगवान में, तो वो सोच के उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोला मैं ऐसे भगवान में नहीं मानती जो हमको पुरस्कार और दंड देता है, गॉड इज जज। मैंने कहा बेटा ये तो मैं भी यही नहीं, ऐसे भगवान में मैं भी नहीं मानता हूं, वी आर ऑन द सेम पेज। अब उसको आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने यही सुना था कि ऐसा भगवान जो पुरस्कार और दंड नहीं देता है। फिर मैंने उससे पूछा अगर तुमको मान लो मानना है तो कैसे भगवान में मानोगी? तो बोली जो प्रेम करता है। मैंने कहा एग्जैक्टली यही मेरा भी कंसेप्शन है भगवान का, यही मेरा अनुभव भी है भगवान का। तब उसने कहा अंकिल आई वॉन्ट टू मीट यू, क्योंकि तो हम दोनों एक पेज पर हैं। अब वहां से एक नई कहानी शुरू होती है कि हम लोग इस मान्यताओं को अगर छोड़ दें, केवल अपने प्रश्नों को पकड़ें, तो क्या इन प्रश्नों का कहीं पर समाधान है, उत्तर है, समुचित उत्तर? ये नहीं कि कर्म आपका जो कर्म था उसके हिसाब से। कभी कभी बहुत दुख भी होता है। मैंने शेयरविंद के डिवोटीज, यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आश्रमाइट्स की बात कर रहा हूं और खुलेआम बोल रहा हूं, कोई समस्या होने से बोलते थे अरे देखा इसको मदर हैज पनिश्ड। तो मैंने कहा देखिए एक चीज तो मुझे पता चल गया कि आपने पढ़ा नहीं है माँ शेरविन को, बाकी जो भी हो यू हैव नॉट रेड मदर एंड शेरविन ओपनली, बहुत पुरानी आश्रमाइट, मदर इज पनिश्ड। मैंने कहा मदर एंड पनिशिंग, ये कौन सी माँ है जिनकी आप बात कर रहे हैं? वो माँ तो नहीं जिसको मैं जानता हूं। मैंने वो बेसिकली सावित्री की एक लाइन पैराफ्रेज कर दी, सावित्री में डेथ जब ये सब कहती है तो सावित्री कहती है हु इज दिस गॉड रेयर्ड बाय दाई थॉट्स, नॉट ही हुम आई हैव नर्चर्ड इन द टेम्पल ऑफ माई हार्ट। ये वो भगवान नहीं है जो तुम बता रहे हो। देखिए भगवान के भी कितने कंसेप्शंस हैं, और फिर वो कहती है मेरे भगवान तो वो हैं जो नर्क की अग्नि में उतर आते हैं बचाने के लिए। सावित्री की पंक्तियां हैं बुक 9 कैंट 2 में मिलेंगे कि नॉट ही माय गॉड स्वीटली सफर्स ऑल, नरक में उतर आते हैं बचाने के लिए। ये कौन सा कंसेप्शन है जो तुम्हारा है? और बहुत बार मुझे लगता है कि ये हम लोग जो भगवान इरेक्ट करते हैं, एक बार और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कोई व्यक्ति, आश्रम की बात कर रहा हूं, किसी से उसका झगड़ा हो गया, शायद उसने कुछ पैसे वैसे लिए थे वापस नहीं किए तो गुस्सा आया, गुस्सा होने के बाद उसने क्या किया, रोज जाके वो माताजी फिजिकल बॉडी में हैं पर शेरविन समाधिस्थ है, समाधि पर जाके प्रे करता था इसका बुरा हो जाए, इसको ये इसको सजा मिलनी चाहिए, इसका कर्म का सजा मिलनी चाहिए। अब वो देख रहा है कि वो तो प्रॉस्पर करता जा रहा है, वो आदमी और बढ़िया होता जा रहा है, माने बढ़िया मीन्स और राज्य कर रहा है। तो एक दिन उसे रहा नहीं गया, उसने मां से पूछा मां ये क्या है, क्या हमारी बात सुनी जाती है? तो मां तो जानती थी खेल था उनका, फिर कहती देखो प्रॉब्लम क्या है ना, तुम जिस भी कारण से उसकी चेतना को मेरी चेतना के संपर्क में ला रहे हो तो मेरी चेतना का क्या असर होगा? तुमको लगता है कि मैं दंड दूंगी? मैं तो उसके अंदर परिवर्तन भी लाऊंगी और उसको और प्रॉस्पर करेगा वो हर तरह से। यू आर द वन ब्रिंगिंग हर हिज कॉन्शियसनेस इन कॉन्टेक्ट विद माइंड। अब देखिए इसमें कितना बड़ा संकेत है कि एक ओर भगवान कुछ कर रहे हैं इस संसार में, सृष्टि में, यदि ये भगवान की सृष्टि है, शेरविंद इस बात का पुष्टि करते हैं कि हां, और हो सकता है कि हम उनको उस बात को समझ नहीं पा रहे, और दूसरा है कि हम किताबों से पढ़ के अपने धारणाएं बना रहे। अब इसमें एक एक कंसेप्शन ले ले भगवान का, भगवान कौन है? सर्वज्ञ है। तो प्रश्न उठता है कि भगवान अगर सर्वज्ञ है तो हमको रोकते क्यों नहीं है? सीधा उत्तर है, रोक के देख लीजिए अपने बच्चे को, वो कुछ नहीं सीखेगा, कुछ भी नहीं सीखेगा। हो सकता है कि वो आपका परफेक्टली ओबीडियंट चाइल्ड हो जाए, एक कॉपी हो जाए जो आप चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं। वो ग्रो करता है इसके माध्यम से। तो एक रिलेटिव फ्रीडम हम सबको दी गई है। अब देखा जाए तो भगवान तो ज्ञान कितने प्रकार से देते हैं। हम कोई आदमी फॉरगेट अबाउट कि गीता रामायण इन सब में तो उन्होंने लिख के आने पर दिया है। कोई भी व्यक्ति कोई कर्म करता है ना, एक सेकंड को अगर रुके तो उसको हृदय में खुद ही पता चलेगा, उसको योगी होने की आवश्यकता नहीं है। कोई चीज है जो आप देखिए, चोर हमेशा, एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो कहीं ना कहीं वो अंदर में उसको पता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, ही नोज, पर वो कर रहा है, वो एक अलग बात है। तो भगवान सूचित भी करते हैं कि तुम्हारे लिए एक स्ट्रेट रास्ता क्या है और तुम्हारे लिए एक डिफिकल्ट रोड कौन सा है। अब क्यों डिफिकल्ट रोड बनाई है उसकी भी हम लोग बाद में बात करेंगे। ये भी सुनते हैं कि हम भगवान सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ हैं तो फिर क्यों हम ये सब प्रॉब्लम, ये सर्वज्ञ नहीं सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ की तो बात हो गई। भगवान सर्वज्ञ हैं, वो चाहते हैं हम भी सर्वज्ञ बने, अनुभवों के द्वार से जाके। अब देखिए बच्चा छोटा होता है, उसको सेकेंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में उसको लगता है कि अरे जीवन मेरा खत्म हो जाएगा। माता पिता भी बड़े सीरियस होते हैं उस समय, दादा दादी का क्या रोल होता है? वो अपने बच्चे से कहते हैं, मतलब बच्चे के माता पिता से, अरे तू भी ऐसा था, देख ना तू अभी तो ठीक कर रहा है ना। क्योंकि उस द्वार से गुजर के एक अनुभव जो आता है उसमें आप उसी चीज को आप अलग ढंग से उसका मूल्यांकन करते हैं। पहले तो हमको ये जानना है वो चीज जो उस समय लग रही है आपको कि बड़ी भयानक है, लार्जर कंटेक्स्ट में देखते हैं तो कोई और चीज नजर आती है। सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है तो हमको करने ही क्यों देते हैं ऐसा कर्म जिससे बाद में पीड़ा होती है। अगेन यही बात आती है कि भगवान हम लोगों को ऑटोमेटॉन नहीं बनाना चाह रहे हैं। ऑटोमेटॉन क्या होता है कि चाबी भर दी और वो चलेगा खिलौना, आप जिस जो दिशा रख लीजिए, लेकिन खिलौना तो कॉन्शियस नहीं है। भगवान चाहते हैं कि हम चेतना में ऊपर उठें, इसलिए ये एक रिलेटिव फ्रीडम, थैंक गॉड एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, रिलेटिव फ्रीडम है जिसमें हम टकराते हैं, लगता है कि भूल कर रहे हैं, इन सबसे हम ग्रो करते हैं, चेतना के अंदर ग्रो करते हैं और हम उसी चीज को बेटर हैंडल करते हैं। इसका एक सिंपल उदाहरण है कि अग्नि, अग्नि से पहले शुरू में आदमी यह सीखता है कि भाई अग्नि में खाना बन सकता है, अग्नि जलाती भी है। जब वो धीरे धीरे अग्नि को स्टडी करता है, सीखता है, तो वो देखता है अग्नि के अनेकों रूप है। अग्नि से आप सौर ऊर्जा और पूरे तारों की सैर कर सकते हो उस एनर्जी से। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सब गुजर के उसके अल्टीमेट शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करते हैं, जानते हैं। तो भगवान की जो ओमनीपोटेंस है, जैसे एक माता पिता है, पिता है बच्चे के साथ कुश्ती लड़ रहा है मतलब सिखा रहा है, एक एक पेरेंट बच्चे को, छोटे बच्चे को एक्सरसाइज करने के लिए करते हैं ऐसे, मेरे पिताजी भी करते थे, आ जा चल कुश्ती लड़। तो अब क्या करते थे वो, ये थोड़ी कि वो तो बहुत बड़े हैं और मैं छोटा हूं तो हरा देंगे हर बार। मैं भी करता था अपने बेटे के साथ में, जब क्रिकेट खेलता था तो ऐसे थोड़ा सा कभी तेज बॉल दे दिया, कभी माइल्ड बॉल दे दिया। खेल है जिससे वो सीखे और ग्रो करे, कभी ऐसे कि जैसे मैं आउट हो गया। तो ये खेल में पर्पस क्या है, पर्पस ये कि हम ग्रो करें। तो एक लंबे समय तक खेल ऐसे चलता है जिसमें ऐसी घटनाएं होती हैं, हम जीत गए फिर हार गए। अब ये दोनों आवश्यक हैं, ये दोनों प्रकार की चीजें जिससे हम ग्रो करें, सीखें, नई नई स्ट्रेटजी बनाएं। तो ये एक पार्ट है। सर्वज्ञता स्वयं को ऐसे प्रस्तुत करती है जैसे असक्षम है, अज्ञानी है। कई बार लोग बोलते हैं भगवान को तो हमने प्रार्थना की थी लेकिन हमारा तो काम पूरा नहीं हुआ। सर्व सक्षमता क्या है भगवान की, कि हम जो मांगते हैं वो दे दो। हम तो कभी क्वेश्चन नहीं करते कि हम जो मांग रहे हैं वो सही है कि नहीं है। बहुत बार हमको इमीडिएटली पता नहीं चलता। बहुत से लोग हैं नारद ऋषि की तरह, मुनि की तरह, कहते हैं मुझे तो शादी करनी है, तो भगवान ये थोड़ी बोलेंगे शादी नहीं करो, क्यों, क्या होगा। अब उसके बाद उसके जीवन में पूरे समय वो साधु भी बनेगा तो मन में ये जा रहा होगा शादी करके क्या होता, क्या होता। शादी कर लिए, शादी कर लिए तो उनको पता चल गया कि अरे अरे तो प्रॉब्लम हो गया प्रॉब्लम हो गया एक दिन भगवान आते हैं, चलेगा मेरे साथ, अब वो एकदम रेडी है। लेकिन साथ में क्या कहता है, सबको लेके चलो, सबको भी लेके चलेंगे भगवान, ये भी है, वो एक अलग स्टोरी है ऑल टुगेदर। तो ये जो प्रोसेस है इवोल्यूशन की, एक लंबे समय तक जब अज्ञान में चलती है तो हमको ये पता नहीं चलता कि भगवान चाहते क्या है आफ्टर ऑल। और यहां तक हम वेदांतिक तरीके से समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अंत में तैयार होते हैं भगवान को पूरी तरह एक होने के लिए। लेकिन इतना लंबा ये प्रोसेस सिंपल होती जैसे क्लासरूम वगैरह तो ठीक है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कभी कभी एक पूरा जीवन इसमें समाप्त हो जाता है। तो वहां पर क्या कोई और भी ग्रेटर प्लान है, अब यहां पर शेयरविंद ये मिसिंग लिंक को भरने लगते हैं। वो कहते हैं ठीक है, यहां तक ठीक है कि सोल रियलाइज करती है और वो एंजॉय करती है खेल को, लेकिन खेल क्या बेटर हो सकता है। अब देखिए, खेल बेटर हो सकता है ये एक कंसेप्ट अभी शुरू हुआ है। आज के युग में लोग खेल को बेटर करना, जैसे T20, पहले हम लोग केवल 5-day मैच जानते थे, अब T20 आ गया, अब वो खेल एक लेवल पर, एक अलग लेवल पे हो गया। तार से क्या ये खेल और सुंदर हो सकता है, क्या सिखाने का तरीका, शिक्षा में देखिए, पहले शिक्षा में क्या होता था, हम लोग तो कोई इंटीग्रल एजुकेशन ये सब के नहीं है प्रोडक्ट। हम लोग जाते थे स्कूल में, वहां खेलते कूदते, कभी कुटाई होते, कभी बाहर पनिशमेंट, ग्रो कर गए एंड नॉट बैड. अभी हम लोग इतना, तो क्या एजुकेशन ऐसी हो सकती है? एग्जाम्पल दे रहा हूं. तो वहां पर है, हां ये खेल बेटर हो सकता है यदि हम उसके लिए तैयार हैं. भगवान यहां पे ये है कि आर वी रेडी टू प्ले द बेटर गेम, कैन द लेवल बी रेज. देख जगह श्री अरविंद अपने एक एफोरिज्म में लिखते हैं कि जैसा मेटीरियल होता है भगवान उसके साथ वैसे ट्रीट करते हैं. तो एक जगह कहते हैं यदि तुम लोहा हो हार्ड ओर, तो उनका हथौड़ा भी उतने जोर से पड़ता है, और तुम जब सोना बन जाते हो तो क्या होता है उसके बाद, टटक टटक. अब देखिए सोनार कैसे करता है, उसमें से गहना निकाल आता है. तो एक लंबे समय तक ये जो मेटीरियल है, इस मेटीरियल का भी एक प्रयोजन है. केवल ये नहीं कि हमारी सोल जुड़ गई भगवान से, ये मेटीरियल और ये मेटीरियल वर्ल्ड भगवान इसको अबैंडन करने का नहीं सोचे, उनसे ही निकला है. लेकिन इस पे धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये मेटीरियल और जो सोल है इन दोनों के बीच में एक बेसिक गैप है. और इस गैप को हम ऐसे समझें, कोई कलाकार को अगर हम लोग दुर्गा जी की मूर्ति बनाने को, वो बनाएगा, देख हम सब जानते हैं कैसे बनती है, बट जस्ट ए क्विक फ्लैश. तो कलाकार क्या करते हैं जो बना रहे मूर्तिकार, वो पहले तो मूर्ति के लिए मिट्टी लाते हैं. कहां कहां से लाते हैं? 29 या 21 जगह से लाते हैं, इंक्लूडिंग ए ब्रॉथेल, वहां से भी लाते हैं, सब जगह से मिट्टी लाते हैं. वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. उसके बाद एक लंबे समय तक आप बीच में देखेंगे तो बिचाली है, बिचाली मतलब वो जो हे होता है, ये सब करके लास्ट में आप कहते हैं, फिर वो जीवंत होती है और आप कहते हैं वो मां साक्षात हो गई. तो एक लॉन्ग प्रोसेस होती है मेटीरियल भी. अब यहां मेटीरियल से डिस्कनेक्टेड नहीं है. अब इसका कैसे अप्लाई करता है रियल लाइफ में? सबसे पहले हमारे अंदर कोई भी चेंज आना हो, जो चेंज शेयरविंद लाना चाह रहे हैं, पहले वो एक कंसेप्शन के रूप में मनुष्य के मन में, प्रबुद्ध मन में, या उसके हृदय में भावों के रूप में जन्म लेगा. ठीक वैसे जैसे कलाकार मां दुर्गा की प्रतिमा बनाता है, तो सबसे पहले कहां बनाता है? उसके हृदय में प्रतिमा होती है. माइकल एंजेलो की कहानी है ना कि वो रोज रात को चट्टान पे टक 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 कर रहा है. सारे गांव के लोग अपने अमृतदाई थे प्रीवियस लाइफ में, तो बहुत ही गांव के लोग बड़े परेशान हो रहे हैं. एक दिन रात को कोई आवाज नहीं आ रही है. अब इन लोग को नींद नहीं आ रही है. क्यों? क्योंकि आदत हो गया है आवाज का, छिनी हथौड़ी का. तो सब वेट कर रहे हैं, सुबह होगा तो हम लोग जाके देखें ये मर तो नहीं गया. तो जाके देखते हैं तो माइकल एंजेलो बड़े शांत मन से बैठा हुआ है, मूर्ति तैयार है. तो किसी ने पूछा, अरे अद्भुत, आपको कैसे पता चला कि मुझे ऐसी मूर्ति बनानी है? तो उन्होंने कहा, क्योंकि ये मूर्ति मेरे हृदय के अंदर थी. तो हमेशा हम देखते हैं कि इस संसार में जो भगवान जो उत्तर उत्तर प्लान आता है उनका, ये प्लान एक एंड नहीं है. सबसे बड़ी गलती, मैन इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट. लेकिन ये तो मनुष्य क्या है, वो तो बीच का एक हिस्सा है. उसके आगे अब पता कैसे चलेगा कि उसके आगे कुछ आना है कि नहीं, ये भी लोग पूछते हैं. ठीक है, शेरविन ने लिख दिया है. तो सबसे पहले वो कहां जन्म लेता है? वो हमारे कंसेप्शन में जन्म लेता है. और अगर हम ध्यान से देखें तो वही 50 के पहले, 1950 के पहले सब लोग इसको मानते थे मायावाद है या कर्मों की थ्योरी है. 60 से एक नया थॉट लोगों के अंदर आना प्रारंभ हो गया है. क्या थॉट है? अगर आप विदेशों के वर्ल्ड में देखें तो वहां पर ये थॉट है, वी वांट नो एजुकेशन, ए वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज. और अगर भारत में देखें तो देखिए गाने के रूप में प्रख्यात गीत आया था, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, आंसू भी ना हो गम भी ना हो, जहां प्यार ही प्यार चल पले. अब एक नया थॉट मनुष्य के इमेजिनेशन और हृदय के अंदर जन्म ले चुका है. कैसे जन्म लिया है नहीं जानते. माता पिता में नहीं है, बच्चों के अंदर है. इससे भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि माता पिता का फॉर्मेट पुराना है, बच्चों के अंदर यह नया फॉर्मेट आ गया है. वो इस वर्ल्ड में परफेक्शन चाहते हैं, नहीं तो वो दे डोंट बिलीव इन गॉड. उनको आप बोलेंगे वो वाला भगवान, उनको विश्वास नहीं है, क्योंकि वो यहां पर देखना चाहते हैं उस परफेक्शन को. तो पहले वो मनुष्य के थॉट इमेजिनेशन हृदय में जन्म लेता है. कोई भी चीज जो लास्ट करने वाली है, और जो दूसरे तरह की चीज है जो केवल आप दिखाने के लिए बाहर बनाते हैं वो धोखा होती है। आपको शायद पता होगा एक बड़े फेमस राम रहीम बोल के संत कहते हैं लोग सेंट, वो जेल चले गए। उनके जो आश्रम सो कॉल्ड आश्रम है उसमें ऑरोविल की तरह एक रेप्लिका लगा हुआ है जिसमें सातों वंडर है बीच में, मतलब उन्होंने उसको एक इमिटेशन किया है। लेकिन इमिटेशन और रियलिटी में यही अंतर है कि रियलिटी में वो पहले आपके कल्पना में आएगी मन में, फिर आप उसमें लेबर करोगे, और इमिटेशन क्या होता है आपने कहीं से उठा करके बना दिया लेकिन वो रियल नहीं है। तो भगवान इमिटेशन में नहीं विश्वास करते हैं, वो रियल। तो हमारे अंदर जो अभी जीवन के बारे में, समाज के बारे में, संसार के बारे में जो हम सबके अंदर अभीप्सा के रूप में या केवल एक कल्पना के भी रूप में, विचारों के रूप में जो चीजें आ रही हैं, जैसे आजकल एक चीज आने लगी है कि क्या मनुष्य का जीवन डेथ पर कॉन्क्वेस्ट हो सकती है। ये फिजिकल डेथ पर कॉन्क्वेस्ट इवन वैज्ञानिकों के अंदर, हार्ड कोर मेडिकल साइंटिस्ट के अंदर आ गई है। कैसे उसकी चर्चा में नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। लेकिन वो चीजें पहले हमारे थॉट, इमेजिनेशन, फीलिंग्स इसके अंदर आ रही हैं। इसीलिए आजकल बहुत सारे बच्चे हैं वो अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हालांकि ये नहीं कि लव मैरिज में खुश होंगे, नहीं होंगे, ह्यूमन नेचर इम्परफेक्ट है, लेकिन उनको एक वर्ड है जो उनको कैच कर गया है, प्यार हो गया है उस, और उसमें जाना चाहते हैं वो उस अनुभव के द्वार से। अब प्रारंभ हुआ है, धीरे 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 वो प्यार क्या होता है इसको समझेंगे, ट्रू लव की ओर बढ़ेंगे, लेकिन ये प्रोसेस ऐसे प्रारंभ होती है। तो प्रोसेस कहां ले जाएगी, क्या कोई मास्टर प्लान है भगवान का? बिल्कुल है, और शेरविंद ने इसको पूरे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। मास्टर प्लान को समझने से बहुत सिंपल है एक तरह से। क्या कह रहे हैं शेरविंद, मोस्ट लॉजिकल चीज, ये जड़ तत्व संसार क्या है, ये भी भगवान है, भगवान इसके अंदर छिपे हुए हैं। हमारे उपनिषदों में भी इसको ऐसे कहा गया है, अन्नम ब्रह्मेति, प्राणम ब्रह्मेति, मन ब्रह्मेति, विज्ञानम ब्रह्मेति, आनंदम ब्रह्मेति। भगवान ही है जो ये बन गए हैं, दिखते तो नहीं, समझ नहीं आते, हां, लेकिन आप देखो इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या क्या है। सिलिका चिप, सिलिकॉन जो हमारे मिट्टी है, उसके अंदर कंप्यूटर की पॉसिबिलिटी है। अगर आप उसको सही ढंग से उस तत्व को समझेंगे तो इस जड़ तत्व के अंदर क्या नहीं छिपा हुआ है, ये एक भाव भारतवर्ष में रहा है और उसी को आधार बनाकर ये प्लान अनफोल्ड कर रहा है, उसको छोड़ के नहीं। और इसीलिए हम पूरे इवोल्यूशन में देखते हैं, विकास में, कि केवल चेतना नहीं डेवलप होती है, उसके साथ साथ जड़ तत्व भी मॉडिफाइड होता है, ये तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या वो उस लेवल पर पहुंच गया जहां बोले नाउ गॉड्स वर्क इज ओवर? नहीं, क्योंकि अब वहां हम उस प्रश्न पे आते हैं, अगर हम जीवन को देखें, मनुष्य को देखें, तो ही इज फार फ्रॉम व्हाट ही इवन इमेजिन्स और वांट्स, बहुत दूर है अभी। हमारे अंदर ये जन्म ले चुका है बीच की, नहीं हमको वैसा होना चाहिए व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, लेकिन हम है नहीं। तो क्या फिर अंदर अंदर हम लोग भगवान को पाले? नहीं, यही प्रोसेस जो जड़ तत्व तो धीरे 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 मॉडिफाइड होता हुआ मनुष्य तक आया है, मनुष्य के परे भी ले जाएगा। कहां ले जाएगा? वहां शेरविंद पूरा अपना एक मैप अनरोल्ड कर देते हैं हम सबके लिए, कि देखो मैं ही हूं जो मिट्टी बन गया हूं, मैं ही हूं जो प्राण बनता हूं, मैं ही हूं जो मन के अंदर विकसित होकर प्रश्न करता हूं, और मैं ही हूं जो उसका उत्तर बन के उच्च चेतना से तुम्हारे अंदर प्रवेश करता हूं, मैं ही हूं जो तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान है, जो तुमको ले जाता है इस सारी प्रोसेस के थ्रू, और भी बहुत कुछ मैं हूं जो तुम अभी मन से कंसीव भी नहीं करते। अगर हम डिवाइन प्लान को देखें तो वहां से वो प्रारंभ करते हैं कि एक है, उस एक से दो ईश्वर और शक्ति, और उसके बाद धीरे धीरे सुप्रामेंटल, सुप्रामेंटल भगवान का वो जो क्रिएटिव, क्रिएटर का एस्पेक्ट है, उसके पहले तो सच्चिदानंद, सत पुरुष, चित तपस, शक्ति और आनंद, आपस में दे आर वेरी हैप्पी। सतलोक, चिदघन लोक, तपोलोक, आनंद लोक। लेकिन वो चाहते हैं, कौन चाहता है आनंद जो उनका साथ का बच्चा है। ये एक इमेज है, सत और चित, ईश्वर और शक्ति के मिलन से आनंद का जन्म हो रहा है। आनंद क्या कह रहे, आनंद इज लाइक बेबी कृष्णा। वो कह रहे मम्मी पापा मेरे को खेलने के लिए बहुत बहुत कुछ चाहिए, मेरे जैसे। भजन है ना, काना मांगे खेल खिलौना मातु यशोमती मैया से। तो आनंद के ही विस्तार के लिए सुपरमाइंड क्या है, उन्हीं एक का जो क्रिएटिव पावर है, क्रिएटिव नॉलेज है। क्रिएटिविटी हटा दीजिए, जैसे एक व्यक्ति है जो शांत बैठा हुआ है, वही व्यक्ति जब लिख रहा है तो क्या दो अलग है, एक ही है। एक जब उसने सारी अपनी क्रिएटिविटी की क्षमता को, सृजनात्मक शक्ति को अपने अंदर आत्मसात किया हुआ है, वही एक ही, वो जब अपनी सृजनात्मक शक्ति को बाहर प्रकट करता है तो वही सुपरमाइंड बन जाता है। और वही सुपरमाइंड फिर जब वो लिखेगा काल और स्पेस और टाइम के माध्यम से, तो सब कुछ उसके अंदर है, ऑलरेडी है वो प्लानिंग के रूप में। व्यास ऋषि से कोई रोक करके पूछता कि आप बताइए, आप इतना भयंकर चीज जो दिखा रहे ना, दुशासन वाला चीरहरण, ये तो सेंसर बोर्ड काट देगा, आप ये क्या कर रहे हैं। वो कहेंगे देखो ये नहीं दिखाऊंगा तो पांडव जागेंगे नहीं, तो द्रौपदी का क्या होगा, मैं बचा लूंगा, चिंता मत करो। और बाद में जब वो पूरा सीन डेवलप होगा, पूरी महाभारत आएगी, तो महाभारत के अंत में क्या रहता है, कृष्ण 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 कृष्ण। और ये सारा जो विस्तार है वही कहानी, ये संसार की कहानी है। वो एक जो अनेकों अनेकों रूप में बनना चाह रहा है, बन रहा है। एक बड़ी सुंदर एक कवि की पोयम की दो लाइन है, आमार एके कृष्णा मन भरे ना, आमी अनंत कृष्णा डूबे चाहिए। सो ईच वन हैज टू बिकम द सेम डिवाइन इन, नॉट ओनली अंदर में, अंदर वाला पार्ट वेदांत समझा देता है, लेकिन प्रकृति में, हमारी चेतना में। गीता कहती है एक परा प्रकृति है भगवान की और एक निम्न प्रकृति है, हिंट देती है कि निम्न प्रकृति में भी मैं हूं। जो वो पूरा डिस्क्राइब करती है, गंधों में मैं ये हूं, रस में ये हूं, उसमें भी मैं हूं, लेकिन वो बस आगे की बात नहीं बताती है कि एक दिन तुमने जो ये निम्न प्रकृति धारण की हुई है माइंड लाइफ बॉडी की, एक दिन तुम भी इसी प्रकार परा प्रकृति को धारण करोगे, और तब हम पूरे खेल का, तब हम लोग भी कहेंगे श्री अरविंद की तरह, एट लास्ट आई फाइंड ए मीनिंग ऑफ सोल्स बर्थ into this universe, terrible and sweet। ये भी है, खाली terrible नहीं है। कितना भी दुखी हो व्यक्ति, बोलिए अच्छा यमराज से हम टिकट मंगा दें, हमारा साठगांठ है, बोले ना 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 अभी बेटा का शादी देखना है। into this universe, terrible and sweet, I who have felt the hungry heart of earth aspiring beyond heaven to Krishna's feet। तो दुख क्या करता है, दुख हमको हमारे अंदर नचर करता है उस प्यास को। देखिए डिवाइन प्लान कितने परफेक्शन से बना है, वो उस प्यास को नचर कर रहा है। सुख क्या करता है, थोड़ा हमको, वो कहते हैं ना पंखा दे रहा है। दोनों के द्वार से गुजर करके हम तैयार होते हैं। क्या, किस लिए, केवल ये नहीं कि अंदर अंदर हम भगवान को पालें, किंतु हमारे मन में भी वो पूर्ण प्रकाश आए, हमारे हृदय के अंदर वो दिव्य प्रेम प्रकट हो, हमारे जीवन में वो भागवत आनंद, भागवत शक्ति, उसका प्रभाव हो, और हमारा शरीर भी एक दिव्य देह में रूपांतरित हो। और ये लॉजिक भी है, क्योंकि यदि ये जड़ तत्व तो भगवान ही ये बने हैं, तो अंत में उसकी नियति क्या होगी, यही होगी कि वो जड़ तत्व तो भी दिव्य बनेगा। उसके अंदर भगवान छिपे हैं तो अपने आप को प्रकट करेंगे। यही हम देखते हैं, नरसिंह अवतार की भी कहानी है, लेकिन उसमें जड़ तत्व तो टूट जाता है, तो ये प्रोसेस चल रही है जिसमें धीरे धीरे अपने अंदर भगवान को प्राप्त करना, ये तो पहला स्टेप है जो वेदांत हम लोगों को कह चुका है, लेकिन इस प्रकृति के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, उनको भी प्रकट करना, उनको भी ऊपर तक उठाना और अंत में ये देह को भी पूरी तरह दिव्य बनाना। क्यों? क्योंकि उसमें भी भगवान है और उसमें भी भगवान का पूरा जागरण, जैसे माँ दुर्गा की प्रतिमा अंत में उसी मूर्ति के अंदर में माँ दुर्गा को स्थापित किया जाता है, ये पूरी एक प्रोसेस है। ये बहुत लंबा विषय है, एक्चुअली एक हफ्ते का विषय है, पर अब मैं रुकूंगा। जय माँ, जय माँ।